कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे सातवें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा, तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो आठ प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पवित्र पुराण की 10 पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट साफ कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरे, इनकी माता दुर्गा है, देवी दुर्गा जी। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति भी कहलाती है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया, और पांचवा ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके जैसे कर्म है वैसा ही इनको दे सकते हैं, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये तो या स्पष्ट के ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी पूजा करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं, हम अमर नहीं हो सकते। गीताजी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उस संत से परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता कि उसी की पूजा करो। यह है 15वें अध्याय का 4 श्लोक। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, जिसकी साधना करने से जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में, चौथे अध्याय के पांचवें और नौवें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो पुण्यात्माओं इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहं सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए ये जो स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, और ओम नाम ब्रह्म का है। इससे ऊपर दो परमात्मा और हैं ब्रह्म से ऊपर, इस ब्रह्म को सर्वपुरुष भी कहते हैं, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष तो ये ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और ये दोनों ही नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, जीवित आत्मा किसी की मरती नहीं। ये विषय अलग है, क्योंकि कुत्ते की भी ना मरती हो तो गधे की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में फिर बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते है, वह श्रेष्ठ परमात्मा तो प्रभु तो कोई और है, पुरुष तो कोई और है। वो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से अलग है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा मीन वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण केवल सतलोक में जाने से समाप्त होती है, सचखंड में, वहां वृद्धावस्था नहीं है। अपुण आत्माओं प्रत्येक सदग्रंथ को हम गहराई से समझेंगे, उसमें बहुत गुड रहस्य हैं, सांकेतिक शब्द बहुत हैं। अब जरा मरण क्यों लिखा यहां पर, जन्म मृत्यु क्यों नहीं कहा? जरा मरण का अर्थ है, जरा माने वृद्ध अवस्था नहीं है वहां पर, तो इसका मतलब सृष्टि है वहां पर, वहां पर जीवन है, जहां के लिए संकेत किया जाता है सनातन परम धाम का। और ये नकली पंथों के संत कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का नूर ही नूर है, और उस प्रकाश परमात्मा के अंदर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, परमात्मा निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये है वह लोक में दंत कथा, नकली पंथ जो काल के बनाए हुए तैयार किए हुए, अब ये सब फ्यूज हो जाएंगे। बुद्धिमान समाज है, आज जरा सा ध्यान इधर देंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सेकंडों में समझेंगे। इस तरह का ज्ञान दास ने परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपके समक्ष कर दिया है। तो उसमें कहा कि जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं वो तत्ब्रह्म विदु, तत्ब्रह्म से उस तत्ब्रह्म को जानते, तत्ब्रह्म को से परिचित है, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित है, और सब कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, प्रभु फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और ये कर्म क्या है, मुझे डिटेल से बताइए। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता के ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्मा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, सर्वपुरुष कहो, सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये तीन परमात्मा है, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनकी अपनी अपनी पावर है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सर्वब्रह्म सर्वपुरुष, 7 ब्रह्मांड का प्रभु है अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, और ओवरऑल कंट्रोलर असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो श्रेष्ठ प्रभु तो परमात्मा तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। जैसे 15 अध्याय के गीता के श्लोक नंबर 1 में कहा है ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अर्धय शाखम नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा जड़ तना डार पत्ते शाखा सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि कहती वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वो परम अक्षर ब्रह्म ही करता है, वो मूल है सब पूरे विश्व का, असंख्य ब्रह्मांडों का जनक है, सबका पालनहार है, यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है, बस सीधी सी बात। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्म और इनका रोल खत्म हो जाता है, लेकिन ये नियमित बनाए जाते हैं क्योंकि यहां के प्रधान बना रखे। अब इतना समझो कि जैसे एक बार फ्लड आया था हरियाणा में 1995 में, उसमें सरकारी बजट मुश्किल से 600-700 करोड़ था और एस्टिमेटेड जो नुकसान हो गया था वो 900 करोड़ का, तो सरकार नहीं भर सकती थी। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार ने 900 करोड़ की एड दी थी जनता का, कोई किसी का मकान गिर गया, किसी का ट्यूबवेल खराब हुआ था, कोई फसल मुआवजा था, पशु मर गए थे उसके लिए, तो वो एड आई थी सेंटर से और डिस्ट्रीब्यूट की थी तहसीलदार और पटवारिया ने। अब वहां जिसने वो पैसा प्राप्त हुआ, किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया 10,000 रुपए मिले, तो उसने ये कहा कि मुझे तो पटवारी ने 10,000 रुपए दिए। पटवारी कहां से देता जब सेंटर पे एड नहीं आती। तो जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सेंटर समझो केंद्र, और टहनियों को फल लगते हैं ये पटवारी समझो अक्षर पुरुष, एक पेड़ है निरंजन वा की डार सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, इन तीनों टहनियों के जो फल लगते हैं ये हमें वर्क डन देते हैं, और वर्क डन आता कहां से, केंद्र से जड़ से आता है तब इनका फल लगते हैं। तो हमने उस मूल की पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे सतपुरुष की, तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बिना मांगे देंगे आपको, ये नियमत है। जैसे आपको बताया पटवारियों ने धन दिया लेकिन आया केंद्र तक था, समझदार को संकेत बहुत होता है। अब यहां 8 अध्याय के 1 श्लोक में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8 अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर, अपना मंत्र बता दिया 8 अध्याय के 13 श्लोक में, मेरा एक ओम मंत्र है नथिंग एल्स, अरे राम अरे कृष्ण 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 अरे मिला दे, राध्य राध्य श्याम मिला दे, ये मंत्र गीता जी में जाप करने का कोई निर्देश नहीं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, व्यर्थ है, यूजलेस है, इस जाप से जीव को कोई लाभ नहीं हो, और ना ही ओम नमः शिवाय, न ओ भागवते वासुदेव नमः, न ओ सैन सरनामा, तो फिर वो किस लिए जाप करते हैं हम, वो लोक वेद के आधार से। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले श्री कृष्ण पुजारी था, विष्णु जी का पुजारी था, शंकर भगवान की भी जय जयकार क्रिया करता, और कोई भी देवी होती उसका श्याम जी का हनुमान जी का कट्टर पुजारी, तो हम जो भी सुख होता था ये सोचा करते थे ये भगवान हमें दे रहे थे, लेकिन वो हमें प्रारब्ध ही मिल रहा था। तो उस लोक वेद के आधार से हम इनकी पूजा कर रहे थे। जब हमें तत्वज्ञान रूपी टॉर्च दीपक परमात्मा ने दे दी गुरुदेव ने, फिर हमने त्याग दी सारी, फिर हम मूल की पूजा करेंगे, टहनियों की थोड़ी करेंगे। अब हम अपनी मूल की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो टहनिया का फल लगेंगे। टहनी हमारी कोई ये नहीं कि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की, कहते हैं इनके गुरु जी, नहीं, संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी है, शाखा है, शाखा तोड़ी नहीं जाती, फल शाखाओं का लगेंगे, लेकिन पूजा मूल की करनी पड़ेगी। तो परमात्मा क्या कहा करते, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लगाना चाहते, बीजना चाहते, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएंगे, गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर हम लगाएंगे। देखिएगा, ये हम आम का पौधा बीजने जा रहे हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग, पौधे के लगाने का, आरोपण करने का ये सही तरीका है। गमले में नीचे गड्ढे में जड़ गाड़ दी, गड्ढा खोदा, जड़ लगा दी, जड़ की तरफ से, मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में दबाया, इसकी पूजा शुरू करी, सिंचाई शुरू करी, तो ये सब टहनियां बढ़ गई, ये सब पेड़ बड़ा होगा और फिर टहनियों का फल लगेंगे। टहनी कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तपगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के फल लगेंगे, लेकिन पूजा करनी पड़ेगी मूल की। तो ये हमारा अभिन्न अंग है, टहनी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते, मूर्ख तोड़ेगा। सिंचाई यहां से करेंगे, ये फल देंगे, बिना मांगे देंगे, क्योंकि अलद पद हो जाएंगे। ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। और हम लोक वेद के आधार से कैसे कर रहे थे, देखिएगा, हम देख बालका की तरह कर रहे थे। आसिनिया जन्यों को पौधा ला रहा होता है, और किसी को न्यू कह, बेटा तू गलत लगा रखा है पौधा, ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ। वो नाराज हुआ है कि तू हमारी विधि को गलत बताता है, तू तो हमारा शत्रु है, नहीं मित्र है, ये देखो ये कोई तरीका है। तो हम ऐसे किए बैठे हैं सारे। परमात्मा कहते हैं कि एक साध्य सब सद, और सब साध्य सब जावे। ये सब साधन ते नष्ट हो गया व्यक्ति, ये पौधा कैसे हरा भरा होगा, सूख जाएगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को, फले फूले एगो। इतनी सी बात है। अब ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया हमारे को, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। पहले परमात्मा हमें अपने ऊपर ही उदाहरण देकर समझाते हैं कि लोक वेद के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, गलत साधना कर रहा था, और जब से सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, इस रस्ते में, दीपक दे दिया हाथ, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया, कि इस लैंप की रोशनी में हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर चलेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट हो गया कि परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 4 में भी स्पष्ट कर दिया है कि उसी की पूजा करो, अन्य की नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 का इसका एक नंबर श्लोक आपको दिखाते हैं। पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने शाखा, जिसके ऊपर को शाखा है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ये समझो ऐसे, ये समझो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ संकेत दिया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस और कुछ नहीं बताया इसके बारे में। बाकी ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताओगे इसके बारे में, तो परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है ये एक पेड़ कहलाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वहां की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पाते रूप संसारी। तो ये परमात्मा कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सर पुरुष कहो वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा ही स्वयं आकर के अपना ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, आसानी तो समझ में आओगे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि इसके जो विभाग हैं, जो ये तम वेद जो उसको जानता है, इन सब को जानता है विस्तार से, सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका अनुवाद गलत देखो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी ऊपर जो मूल है जड़ रूपी परमात्मा, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। आदि पुरुष परमेश्वर सर्वशक्तिमान ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, या ये इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। अधः शाखम, अधः माने नीचे करना था। ये देखो इसी के दूसरे श्लोक में ये अनुवाद में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये दूसरे श्लोक में, तो यहां अधः माने नीचे आना चाहिए था। अधः शाखम नीचे को शाखा, ऊपर को मूल वाला नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष के अविनाशी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है यानी जड़ते लेकर पत्तों तक जो बता देता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब यहां क्या कहा है, अब हम चौथे में आ जाते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 है, ये श्लोक नंबर 4 है यहां पर। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को बली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिससे यानी जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की परवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष को बनाया है रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि केवल उसी नारायण की पूजा करनी चाहिए परम अक्षर ब्रह्म की अपने आत्मा। अब यहाँ सर्पुरुष ये नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान, 15वें अध्याय के 16 और 17 में क्या लिखा है फिर पढ़ लो गीता जी। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 15 का, ये 15 है इसका श्लोक नंबर ये 16 है, यहां से इसमें लिख रखा है कि दिव इमौ पुरुषो लोके सरच अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानी कुटुष्ठ अक्षर उच्यते। अब यहां दिव माने दो, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, पुरुषों माने परमात्मा हैं, कौन कौन से हैं? सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहां भी लगा सकते हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। अब इसका यहां से अनुवाद पढ़ो इनका। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इन्होंने यहां पुरुष छोड़ दिया, दो प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा भी अविनाशी कहा जाता है। अब यहां इसका अर्थ तो यह है कि ये सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये सभी नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर भी नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब यहां से स्पष्ट है, 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। यह लोकतरम आवि से भी भरती, वो अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, अवय अविनाशी। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये तो नाशवान है दोनों ही, भले इसका नाम अक्षर पुरुष लिख दिया। तो अब इसमें थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं भक्त, कोई कर सकता है आपको मिसगाइड कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वता अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। जबकि इसकी मूल संस्कृत देखो कि यस्मात् श्रम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम्, अतः अस्मी लोके वेदे, लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुष प्रथितम प्रसिद्ध हूं, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, मैं किस प्रकार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया? लोक वेद के आधार से। लोक वेद माने दंत कथा के मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जीवात्मा है, चाहे नाशवान शरीर है इनका, चाहे अविनाशी इनकी आत्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं, उत्तम हूं, और इसलिए लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब हमने उस पुरुषोत्तम की शरण में जाना है और उस पुरुषोत्तम के पाने का कौन सा मंत्र है? गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधा समर्थ है। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम, इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है तिर्विध समर्थ है। उस सचिदानंद ब्रह्मण माने सचिदानंद गण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का पाने का, आदि पुरुष परमेश्वर के पाने का, ये तीन मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई भी हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम अन्य कोई भी जाप हम करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन से मंत्र हैं? ये ओम तत् सत। ओम तो सर्वपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का। तत् सांकेतिक है, ओम सीधा है और सत भी सांकेतिक है। ये सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए होए, कहते हैं सो हम शब्द आपके किसी सदग्रंथ में नहीं है, आपके जो 52 अक्षर के लेख तुम लिखते हो उनमें ये मंत्र नहीं है, सोहम मंत्र नहीं है। और ये सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी सार शब्द पाया जदलोई आवागमन बौड़ ना होई। पुणात्मा हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा, किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण है, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं, वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में सतखंड में, वहां से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है और यहां अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में, इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहां क्या कर दिया, ये यहां से बता कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहां इन्होंने कभी जो ऐसे अक्षर लगाकर इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहां प्रसंग नहीं तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते, भले इसका अर्थ कवि कर दो लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है आपको दिखाते हैं, अब जैसे ये यजुर्वेद है अब इसके दो बिंदी यहां लगा दे तो और इसका अलग अलग करें तो भी ये यजुर्वेद ही है। ये देखिए इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते 36 में, इनके 36वें अध्याय में, यह है 36वां अध्याय 6300 अध्याय 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है, रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। यहां देखो ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया, बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है और यहां इस यजु का अर्थ कर दे, जैसे कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव, जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहां पर तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है, यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहां इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया, अगर इसका यहां कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर, हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर जो आपको पहले दिखाया था, ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है, ये ऋग्वेद यहां से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था, ये इसके मुद्रक है, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं 26। इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी साधना करने वाले धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है, वहां उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहां आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहां पर, कबीर देव। हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब या कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे इसमें लिखा कि जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु सबकी रचना करने वाला सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों को हरण करने वाला वह राजा के समान राजा के देखो ये 269 रुपये पढ़े हमने ना कोई नकली नो कह देगा और प्रश्न दिखा दिया होगा ये 270 रुपये आगे राजा पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है देखने जोगा है साकार है भगवान वहां विराजमान है ऊपर के लोक में वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रेष्ठ आत्मा को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है या देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो महापुरुषों को प्राप्त होते हो अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं आप या फिर लिख दिया सर्वज्ञ या लिखना था आप कबीर देव हैं आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हे सोम हमको सुख दें। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहां ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता जो दृढ़ भक्त हैं अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार जी।
नमस्कार जी।
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
लखविंदर सिंह जी।
सर कहाँ से आए आप?
पिंड सजादा जिला अमृतसर तो।
सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
आप गुरु गोविंद सिंह महाराज की भक्ति करते हैं जी।
पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
काम मैं पाठ करता हूँ जी।
कौन सा पाठ करते हैं, किस ग्रंथ का पाठ करते?
गुरु ग्रंथ साहब जी का।
तो आप गुरु ग्रंथ साहब के पाठी हैं, तो परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, परमसंत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
हाँ जी, राम संत रामपाल महाराज की शरण में इस तरह आए जी कि साधना चैनल उत्ते इन्हों का प्रोग्राम आता हुंदा सी, तो मैं रोज देखता हुंदा सी। जद गुरु नानक देव जी की कथा सुनाई इन्होंने वही नदी की, सत लोग लैके गए, फिर उन्होंने कहा भी काशी में साडा एक रूप है जलाए घर में, उत्थे साडे को आ जाना तुहानू सतनाम देंगे। वह जिहड़ा नाम सी गुरु नानक देव नूं दिता, फिर इन्होंने कहा जी बाला ते मरदाना जिहड़े कहण लगे सानू समुंदर विखाओ जी, फिर उन्होंने आख्या अखियां मीठो समुंदर उत्ते लै गए, फिर उन्होंने आखण लगे सानू लंका दिखाओ जी, ते समुंदर उत्ते जाना सी तुर के। गुरु नानक देव जी ने फिर इन्होंने कहा भी तुसीं वाहिगुरू वाहिगुरू बोलते आओ, ते सतनाम वाहिगुरू जिहड़ा बोलते सन गुरु नानक देव जी नूं दिता सी कबीर जी ने, वह जो बोलते थे तो उच्चा बोलिया तो मरदाने ने वह सुन लिया, ओम सोहम जड़ा सी, जदों उन्हें वह बोलन लगा तो मरदाना डुबन लगा, मरदाना जो डुबन लगा तो फिर गुरु नानक देव जी ने वेखा मरदाना डुब रहा है, मरदाने नूं कहा मरदानिया गुरु की करनी वाल नहीं जाइदा, कहनी वाल जाइदा, जो तैनू कहा है वह बोल। फिर मरदाने ने वाहिगुरू वाहिगुरू बोलिया तो मरदाना उस तरह फिर तुरन डह पिया। यह साखी जो गुरु जी सुनाते सन तो कहते सन भी सतनाम तो बगैर मुक्ति नहीं हो सकती, ते दास ने फिर सुनिया सी, ते मैं फिर सुन के ते मेरा जिहड़ा पासा सी ये खलोता सी, 6 साल हो गए सी ये चलदा माड़ा माड़ा चलदा सी, ते मैं आख्या भी इन्हां दे भगत जिहड़े आउंदे सन वह दसदे सन भी मेरी बीमारी दूर हो गई, कोई कहिंदा मेरी कैंसर दूर हो गई, कोई कहिंदा मेरा पासा चल पिया, ते मैं भी ये सुनदा हुंदा सां, ते जद फिर मैं सुनदिया सुनदिया फिर नंबर कैच कीते ते मुड़ के फिर मैं ये परमात्मा नूं मिलण वास्ते बरवाला वे आ गया। आण के ते फिर जदों मैं इत्थे दीक्षा लई फिर उन्होंने आख्या भी कृपान ला दियो कड़ा ला दियो, मैं लाते इन्हां को दीक्षा लैके ते फिर मैं गुरु का नाम जपन डह पिया, ते गुरु जी ने मेरे मोढ़े उत्ते हाथ रखिया जदों, ते मेरे फिर दर्द बहुत ज्यादा हुंदी सी इत्थे बांह दे विच, ओ मेरी दर्द का बहुत फर्क पिया, मैनू पता लगा फिर मैं भी ये गुरु जी पूरे हन, संत पूरे हन, इन्हां दे हाथ रखण दे नाल मैनू को राहत मिली है, मेरा जिहड़ा पीड़ है वह दूर होई है।
पहले आप गुरु ग्रंथ साहब के पाठी भी रहे हैं आप कोई, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे, कौन से मंत्र का जाप करते थे?
मूल मंत्र का जाप करते सी, वाहेगुरु का मंत्र का जाप करते सी, पंजां बाणियां का पाठ करते सी, क्यों गुरु रामदास जी ने कहा है गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भर के उठर नाम त्यावे, उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर नावे, अवदेह गुरु हर हर जो हर जापे सब किलो एक पाप दोख लै जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहिंदया उठद्या हर नाम त्यावे, जो सास ग्रास त्याज मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे, जिन्हों दयाल होए मेरा स्वामी तिस गुर से गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर से की जो आप जपे और रह नाम जपावे। ए गुरु रामदास जी ने कहा सी, ते सारे भी जेड़े सिख हैं वह सवेरे उठते हैं अमृत वेले उठना इशनान करना पंजां बाणियां नितनेम करना फिर गुरु के दर्शन करने फिर अपना जिहड़ा मूल मंत्र दिता उहदा जाप करते रहना जिने वाहिगुरू वाहिगुरू का मंत्र का जाप करते रहना, पर जिहड़े साडे दुख सी वह साडे दूर नहीं होए। मेरा इत्थे प्रश्न भी होया है 2 लाख रुपया लगा उदों ही प्रश्न होने ते मैनू सर्जरी की हुई आ और दवाई मैं खा रहा मैं गुरु जी को प्रार्थना करनी आ कि महाराज मेरी दवाई छड़ाओ।
जो वाहेगुरु का आप जाप करते थे तो क्या है ये वाहेगुरु?
वाहेगुरु जिहड़ा है परमेश्वर नूं कहा है वाहेगुरु, वह हुण परमेश्वर जिहड़ा इन्होंने कहा है गुरु जी ने कहा भी वह परमेश्वर कबीर साहब हैं, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब हैं, क्योंकि कबीर साहब ने बाणी कहते दो दो लोचन पेखा हर बिन और न देखा नैन रह रंग लाई आ बेगल कह न जाई, हमरा भरम गया पौ भागा जब राम नाम चित लागा, बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला, कथनी के भरमन जाई सब कद कद रही लुकाई, जंगो गुरमुख आप बुझाई ताके हिरदे रिया समाई, गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंगराता मिलियो जग जीवन दाता। गुरु साहब कबीर साहब की बाणी है जी, कबीर साहब जी ने यह बाणी जिहड़ी असीं रोज पढ़दे सां पी अखां दे नाल उहदे दर्शन कीते जाते हैं, क्यों महाराज कहिंदे निर्गुण आप सरगुण पी होई कला धार जन सगली मोही, और परमात्मा जिहड़ा है निर्गुण भी है सरगुण भी है।
जैसे आप गुरु ग्रंथ साहिब की पाठी थे, तो गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा को साकार बताया है या निराकार बताया?
मैम वो कहते गुरु ग्रंथ साहिब कहते निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धारजन सगली मोही। ये सारी कला है, वह तमाशा है। बाजीगर ने जिस तरह तमाशा लाया है तो सारी खलक जी तमाशा वेखण आई है। कबीर साहब ने कहा है इस करके गुरु साहब जी जदों गुरु नानक देव जी काशी विच गए तो उत्थे फिर उन्होंने जदों वेख्या कबीर साहब का रूप जिहड़ा सानू रूप उत्थे परमात्मा ने विखाया सतलोक विच उही रूप है, फिर उत्थे चरणां दे ढह के डिगे ते फिर उत्थे गाया इस बाणी नू फाई सुरत मलोकी वेस ए ठगवाड़ा ठगी देस खरा सियाणा बहुता भार धानक रूप रिहा करतार। ये करतार है जो जलाहे दे घर विच आया है, ये परमेशर है जिन्हों क्या हक्का कबीर करीम तू बे परवदगार तू वड्डा है। तो गुरु महाराज के भी कहते हैं ज्ञान ध्यान कि कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी। नानक जी कहते जिन्हें मेरी रखिया की कलयुग दे विच वो सब तो वड्डा है।
यानी कि आप मानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये वर्णन है कि परमात्मा निराकार नहीं साकार है और वो परमात्मा कबीर साहिब है जो आदरणीय नानक जी के पूज्य गुरुदेव जी थे, वो भी उन्होंने भी कबीर परमात्मा से दीक्षा ली थी और कबीर परमात्मा ने ही उन्होंने सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था और फिर उन्होंने गुरुग्रंथ साहिब में जो साखी लिखी हुई है जाकी वे कबीर दी नानक की तीवा और वह सिखां दे गल पड़ी अब कौन छुटावे ता, ये आदरणीय परम संत सतगुरु गरीब दास साहिब जी की वाणी है जिन्होंने नानक जी के बारे में अपने ग्रंथ साहब में वर्णन किया है। तो आज वर्तमान में जो सिख समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं, आप पाठी रहे हैं, तो क्या भ्रांतियां फैली हुई हैं सिख समाज में भक्ति के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में, कबीर परमात्मा के बारे में?
गल है जी, गुरु रामपाल महाराज जी ने दसिया है कि कोई नशा नहीं करना। साडे सिखां दे विच पहला ये नशा जिहड़ा ये दूर नहीं होया, क्यों भांग भी खा रहे हैं सुखा भी पी रहे हैं। ये गुरु नानक देव जी ने जदों योगियों ने सिद्धा ने प्याला लिया के दिता सी भंग का ते आख्या महाराज इहना मस्ती चढ़ जाती है सुरती लग जाती है, ते गुरु नानक देव पातशाह ने कहा सी किन्ना चिर सुरती लगेगी भाई, इहदे नाल किन्ना चिर नशा आवेगा। क्यों अख अधूरा सिला पान उतर जय प्रभात नाम कुमारी नानका चढ़ी रह दिन रात। वो मैं भी ये बात नूं कहिंदा सां वी गुरु नानक देव जी कहिंदे हन कि नाम की खुमारी जिहड़ी उह सदा वास्ते चढ़ी रहिंदी है। मेरा पासा खलो गया सी, मैनूं कहिंदे दस्सिया वी निहंग सिंह जी तू खसखास खाया कर काली खसखास खाया कर, और तीन साल दास वह भी खांदा रहा थोड़ा थोड़ा तुरदा रहा इसे तरह। अज जदों दा फिर नाम लिया है गुरु जी ने कहा कोई नशा नहीं खाना, मैं मूँह नूं नहीं ला के वेख्या गुरु जी के नाम दे च इन्नी ताकत है वो रात दिन खुमारी मैनूं चढ़ी रहिंदी है। अगे जिहड़ा नशा मैं खा के तुरदा सां हुण मैं उतरा तुरदा वा, जे मेरी लत उतरा सौंदी है मैं गुरु जी नूं प्रार्थना करनी है वी मेरे उत्ते किरपा करो। ये नाम दे विच सब कुछ ताकत है, वो सच्चा नाम जिहड़ा है वो सतगुरु जी दे रहे हैं संत रामपाल महाराज जी।
जीव की मुक्ति कैसे हो सकती है?
जीव की मुक्ति होनी है जिहड़ा सतनाम मिलना है श्वासां दे नाल, जिन्हों गिणिया गुरु ने कहा जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर, जदों श्वासां नाल नाम जपया जाएगा तो फिर साडा अंदर जिहड़ा साफ होएगा फिर सार नाम मिलेगा उहदे नाल साडी मुक्ति होएगी तो फिर सानू सत लोग लैके जाणगे। सार शब्द ने खड़ना है गुरु की कृपा नाल जाना है।
सर गुरु ग्रंथ साहिब में पूरे संत की पहचान लिखी हुई है, तो क्या लिखा हुआ है पूरे संत के बारे में?
क्यों कबीर साहब कहते संत मिले सुन कही कोई सुनिए कहिए मिले संत मट कर रहिए बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रहिए। अंदर जिहड़ा राम दे नाम च रंगिया होया है वो संत पूर्ण है। सोई संत पूरा कहावे सो सतगुर पूरा कहावे, दो अखर का भेद बतावे एक छिडावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर जावे। फिर वो प्राणी फिर निज घर अपने च जा सकता है कि जिन्हों कहा है महाराज ने ए मन जा तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। गुरु की मत लै गुरु वाला बन गुरु के उपदेश धारण कर ते फिर तू रंग मान सकता है।
सर जैसे सिख समाज में जो भ्रांति फैली हुई है कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते हैं और आप कहते हैं कि गुरु नानक जी को कबीर परमात्मा गुरु जी मिले थे और गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कि सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक चुड़ावे एक लखावे, ता प्राणी निज घर को जावे। तो क्या कहना चाहेंगे आप सिख समाज को इस भ्रांति के बारे में, जो बोला सिख समाज आज वक्त गुरु को ना पहचान के, वक्त गुरु की शरण में ना आके और गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानता है, उस सिख समाज को आप क्या कहना चाहेंगे?
सिख समाज को यही कहना चाहेगा, मैं ये कहना है कि जिहड़ा दो अखर का भेद बता है गुरु साहब जी कहते हैं वह पूर्ण संत है, तो जिन्ना चर सानू वो दो अखर का नाम नहीं मिलता उन्ना चर साड़ी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? गुरु जी का कहना है, गुरु जी सच बोल रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि जो असी कह रहे हैं उन्हें सच करके मान लेना, यह रती एक झूठ नहीं आ। इस करके सारे मेरा यही कहना है कि गुरु जी के कोलो नाम लो, जिहड़ा गुरु नानक देव जी नाम मिलिया सी कबीर जी कोलो, उही कबीर साहब जी महाराज ने कृपा की है संत रामपाल महाराज जी ते, फिर वह नाम देन लगे हैं। क्यों? उन्ना चर तो यह नाम देने की किनू गुरु ग्रंथ साहब मनण वास्ते उन्होंने गुरु ने तो कहा है, पर सिख समाज जिहड़ा साडा गुरु नू उन्नू मन रहा है, पर गुरु ग्रंथ साहब जी जो सानू कहिंदे हन उन्नू मनना पवेगा। क्यों? गुरु जिहड़ा आ, क्यों महाराज कहिंदे ना परमेश्वर जिहड़ा पार ब्रह्म है, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। क्यों? घोड़ बिन ना ही इसवार, साधु बिन ना ही दरबार। जिस तरह घोड़े तो बगैर सवार का नहीं पता चलता, तो इसे तरह दरबार का भी तभी पता तां ही चलेगा जब पूर्ण साधु दे कोल जाइए। जिन्ना चर पूर्ण संत नहीं मिलता उन्ना चर दरबार का नहीं पता चलता।
चाहे आप सिख समाज में पाठी रहे हुए हैं और आपना परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप सिख समाज को या इस भगत समाज को, क्या कहना चाहते हैं आप?
क्यों? कबीर साहब कहते सोई मुख धन है, जामो कहिए राम, देही किसकी बहुपरी पवित्र होएगा ग्राम। जिहड़ा कबीर साहब का नाम है ना, वह जिहड़ा जपेगा फिर लैके ओदी देही की, वह तो सारा ग्राम पिंड भी पवित्र हो सकता है। इस करके मैं तो यही कहना है कि कबीर साहब जी ने जिहड़ा नाम दिता है नानक जी नूं, वह सानू हुण टाइम मिलिया है, जो कबीर साहब ने 5500 पाचा तां मेरा शब्द होएगा साचा। ये धर्मदास ने कहा, धर्मदास मेरे लाख दुहाई, ये सार साहब के बाहर न जाई, सार साहब जो बाहर जो पढ़ी विचली पीढ़ी हंसना तरी। इस करके वो टाइम आया है कलयुग का विचली पीढ़ी वाला, तो हुण सानू जन्म दिता है परमात्मा ने, इस जन्म का असीं लाह लै लईए। क्यों? गुरु जी ने भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। गोविंद किनू कहा? परमात्मा नू, जो धरती की पालना करने वाला है। महाराज कहिंदे हन ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਆ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹ ਲਈਏ। ਕਬੀਰ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਰੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ ਹੁਣ ਲਾਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਵਾ ਲਓ
ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਪਨਾਤਮਾ, ਅਬ ਵੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਓ ਕੋ ਕੈਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਵਿਦੁਤ ਆਕਾਸੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੀ ਧਾਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ ਆਕਰ ਗਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸੀ कांसी धातु होती थी, कांसी और उसकी थाली वेले होते थे, वर्षा के दिनों में जब बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी कि इन थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दें, पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के एक मुचे नहीं मुचकाए, वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं, और वो कैसी लीला करते हैं देखना। वो कवियों की तिरासरण करते हैं। नौवें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहां से शुरू होता है। ये शपथ है कवियन वर्जम, कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहां इन्होंने अनुवाद किया है, यहां अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी 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 उत्कृष्ट उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता हुआ कवियों की तरह आचरण करता हुआ, हाय हाय, कवियों की तरह आचरण करता हुआ वर्जम माने विचरता है, ये अड़ंगा डा दिया, वर्जम माने जाता है घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले अभी आपको बताया था, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, हिंदू धर्म के जो लोक वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त, उस पर इतना आरूढ़ था कि बहुत समय तक परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। बहुत से प्रश्नोत्तरी की तब जाकर वो बात समझ में आई। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा में मिले, मथुरा में वहां स्नान करने के लिए तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भी लोक वेद सुना हुआ था रूपदास नाम के एक उनके गुरु जी से 68 तीर्थ, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र बता रखे थे, और एकादशी का व्रत 68 तीर्थों की यात्रा कर ले बेटा तू स्वर्ग में चला जाएगा। रूपदास जी ने ऐसा गाइड कर रखा था उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे, वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगे था, माथे में तिलक ला रखा, कंठी पहन रखी, जाकर परमात्मा ने कहा हे महात्मा जी मैं भटक रहा हूं भगवान के लिए, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला, बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूं, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी पवित्र शास्त्र है ये, और जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा और एक ओवर कोट पहनते हैं काला ही घुटनों से काफी नीचे तक, एक कच्छा पहनते हैं, तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा हे महात्मा जी मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूं। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिन मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शंका का समाधान हो और आपको बना लूंगा गुरु में, पहले को तो पहले बना लेता हूं लेकिन संघ का समाधान अवश्य चाहूंगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का,